Mantan.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और पत्रकार संतोष पाठक।
नमस्कार। भारत में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों, 60 से अधिक मंत्री और 500 से अधिक वैश्विक एआई अग्रणी जो कंपनियां हैं वो एकत्रित हुई है। भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। और आखिर क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, यानी एआई को लेकर जो समिट हो रहा है, इसका फायदा क्या होगा भारत को और वैश्विक स्थिति पर यानी वर्ल्ड ऑर्डर में भारत किस तरह से एक नई भूमिका अपनी चिन्हित कर चुका है और उसको निभाने को तैयार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं प्रसून शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
आइए सुनते हैं एआई समिट को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने क्या कहा।
नौजवानों में बहुत उत्साह है एआई के लिए और जिस तरीके से यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है उस एनर्जी से स्पष्ट है कि विश्व भर में भारत की जो पहचान बनी है एआई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में देश की नई पहचान बनाई है वो एकदम स्पष्ट इस दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट में दिखाई देता है।
प्रसून शर्मा जी, आप उसी समिट में मौजूद हैं तो सबसे पहला और बड़ा सवाल जो कि आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री साहब ने और जो आईटी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव साहब, उन्होंने कहा कि ये पांचवी औद्योगिक क्रांति है, तो किस तरह से पांचवी औद्योगिक क्रांति है थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर पाएंगे आप?
एआई एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो आपके हर लाइफ के हर क्षेत्र को टच करेगा, चाहे वो आपकी डेली लाइफ हो, जैसे आप किसी चीज को खरीदने के लिए पेमेंट करते हैं, या आप किसी चीज को सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं, या अगर आप फार्मर हैं, कृषि क्षेत्र से हैं, तो आप किसी चैटबॉट या अपने मोबाइल से अपने बीज के बारे में, अपने सॉइल के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये लाइफ के हर जो आयाम है उसको टच करेगा और ये पूरी तरह से उसे बदलने की क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। इसलिए ही हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ये पूरा टेक रेवोल्यूशन है और भारत उसमें अग्रिम इसलिए है क्योंकि हम ना सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं, हम इसके लिए नई एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जब ये एक्सपो का उद्घाटन किया तो उन्होंने अपने जो भारत में बने LLMs है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है सर्वम करके, उसको विजिट किया और बाकी जो हमारे जैसे इंडिया स्टैक, एनर्जी स्टैक, जो भारत ने अपने यहाँ पे जो एक एआई का इकोसिस्टम और एप्लीकेशंस बनाए हैं वो ना सिर्फ भारत के लिए उपयोगी हैं, पूरे विश्व के लिए और खासकर ग्लोबल साउथ के लिए।
प्रसून जी, आपने बिल्कुल इसका जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा कि जो पूरी दुनिया के हित में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को आकार देने में भारतीय प्रतिभा की असाधारण क्षमता को इस एक्सपो ने एक तरह से उजागर कर दिया है। लेकिन दुनिया के अन्य देशों की बात करें, बड़े देशों की बात करें और भारत की बात करें, दोनों में एक बेसिक फर्क है। चूंकि एआई को लेकर जिस तरह की चिंताएं जताई जा रही है उसमें भारत ही शायद इकलौता देश हम कह लीजिए या गिने चुने देशों में कह लीजिए जो इस बात को आवाज उठा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जिम्मेदारीपूर्वक, समावेशी रूप से और व्यापक स्तर पर उपयोग करने की जो प्रतिबद्धता है वो भारत की प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको दोहराया है। ये कितना जरूरी है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तो करें लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक करें, सावधानी पूर्वक करें, ये कितना महत्वपूर्ण संदेश हम न केवल भारत के लोगों को दे रहे हैं बल्कि दुनिया के लोगों को भी दे रहे हैं?
जी, ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है और भारत ने टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जैसे हमारा UPI है, जैसे हमारा आधार है, तो भारत ने करके भी दिखाया है। हमारा जो UPI है तकरीबन पूरे विश्व की जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका 50% ट्रांजैक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है UPI से आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? जब आप एक सिस्टम से इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेन देन कर रही है वो बिना ट्रस्ट के हो ही नहीं सकता, तो भारत ने ये करके दिखाया और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ना सिर्फ कहा है, हम उनको पूरे विश्व को दिखा भी रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमने हेल्थ के क्षेत्र में यहाँ जितने 600 प्लस स्टार्टअप्स हैं वो कुछ हेल्थ बेस्ड AI का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे एक स्टार्टअप है जो हमारी आयुर्वेद है, आयुर्वेद में जब हम नस से अपनी बीमारियां जानते हैं तो उसको ट्रांसलेट डिजिटली करके हमारे वैज को कैसे बनाने, तो हम ये रियल एप्लीकेशन लगा के उसके आउटकम दिखा के पूरे विश्व को यहाँ दिखा रहे हैं कि एक सोशल इंक्लूजन ट्रस्टेड एनवायरमेंट के साथ AI कितना बड़ा और कितना स्मूथ डेवलपमेंट कर सकता है, ना सिर्फ जो पढ़े लिखे हैं वो भी ऐसे जो सिर्फ साक्षर हैं और जिनके पास सिर्फ मोबाइल है, वो मोबाइल से अपनी भाषा में बात करके, चाहे वो किसान हो चाहे वो छोटे एमएसएमईज हो, वो इसका लाभ उठा सकते हैं।
बिल्कुल प्रसून जी, और इसके कई जो महत्वपूर्ण आयाम है उस पर भी हम थोड़ा सा एक एक करके चर्चा करेंगे, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहली बात, ये अश्विनी वैष्णव साहब ने भी कहा है कि 200 अरब डॉलर से अधिक का निवेश, तो ये निवेश कैसे आएगा और इस निवेश को हम ग्राउंड पर कैसे उतारेंगे, क्योंकि लाखों छात्रों ने रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के लिए किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे ग्राउंड पर उतरेगा और लाखों छात्र छात्राओं का, ये जो हमारी यंग जनरेशन है, उसका किस तरह से फायदा होगा इस समिट के जरिए?
जी, अगर आप नोटिस करिए कि ऑलरेडी 42 बिलियन के आसपास का अनाउंसमेंट हो चुका है पिछले 3 से 6 महीने में, जिसमें 3 बड़ी कंपनियां हैं, अमेजन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात कही है ऑल टुगेदर 42 बिलियन के आसपास। और साथ में ही भारत सरकार एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नीति के साथ चल रही है, ना सिर्फ ये सबमिट करा रही है। अगर आप हमारे बजट में भी देखिए, हमारे बजट में इस बार इन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी डेटा सेंटर खोलेगा उसको 20 साल तक का टैक्स फ्री होराइजन मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत अट्रैक्टिव कदम है पूरे टेक विश्व के लिए और खासकर एआई के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए पहले आपको कुछ मूलभूत जो चीजें चाहिए वो है एल्गोरिदम, डेटा और प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग और स्टोरेज। तो जब आपके पास इस लेवल पे डेटा सेंटर्स होंगे, वो आपकी एआई इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पे बूस्ट करेंगे। और रही बात आपने कहा युवाओं के लिए, भारत दुनिया का टॉप 3 एआई कंज्यूमर बन चुका है और भारत में तकरीबन दुनिया का 15% एआई टैलेंट ऑलरेडी है और आने वाले सालों में वो दोगुना होने वाला है। तो ये ऑलरेडी दर्शाता है कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया टैलेंट पूल है, हमारे पास अपना मार्केट भी है, हमारे पास अपना प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम रियल एप्लीकेशंस करके दिखा रहे हैं। यहाँ जो 600 से प्लस स्टार्टअप्स हैं, वो सिर्फ रिसर्च या सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा रहे हैं, वो रियल लाइफ में कैसे उन्होंने इंप्लीमेंट किया है। जैसे एआई बेस्ड एप्लीकेशन है जो चलती मशीनों में फॉल्ट डिटेक्ट कर रही है, जो रेलवे और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो सिर्फ लैब में नहीं बैठे हैं। तो ये ना सिर्फ हमारे बच्चों को, इंटर्न्स को एंगेज कर रहे हैं, बल्कि जो भारत सरकार जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी मात्रा में जीपीयूज प्रोक्योर करके एक्सेस प्रोवाइड किया है, ये भी पूरी दुनिया में एक विलक्षण मैं कहूँ प्रोग्राम है जो किसी भी सरकार ने नहीं किया है सिवाय भारत सरकार ने, कि वो इतनी मात्रा में जीपीयूज लेके स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को एक्सेस प्रोवाइड करें नॉमिनल फीस पे। तो ओवरऑल ये हमारी एटलीस्ट नेक्स्ट ट्रिलियन जो हमारी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एआई के थ्रू होगा, एआई के माध्यम के थ्रू होगा, और जो हमारा एआई टैलेंट पूल है वो तकरीबन 30% के आसपास ग्लोबल जो एआई पूल है उसका कंट्रीब्यूशन करेगा। और इसमें हमारे युवाओं को आने वाले टाइम में एआई मॉडलिंग में, डेटा सेंटर्स में और इसके रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं जैसे सोलर या रिन्यूएबल एनर्जीज में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे अपना काम करने के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए भी।
प्रसून जी, आपने एक बात कही बिल्कुल, और डेटा सेंटर और युवाओं की बात आपने कही, स्टोरेज की क्षमता की बात कही, दो जो मेजर सेक्टर है, जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, तो गांव में रहने वाले किसानों को और सर्विस सेक्टर जो है वो एक बड़ा सेक्टर हो चुका है रोजगार के मामले में और स्वरोजगार के मामले में भी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को यानी किसानों को किस तरह से फायदा होगा और जो युवाओं का जो रोजगार जो सबसे ज्यादा जो प्रदान करने वाला जो सेक्टर बनता जा रहा है सर्विस सेक्टर, इन दोनों सेक्टरों में किस तरह से एआई का उपयोग या सदुपयोग आने वाले दिनों में फायदा पहुंचा सकता है?
उसमें एक और आयाम जुड़ा है, ऑरेंज इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, जिसमें कंटेंट क्रिएशन हुआ या ऐसे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में, तो उसमें मुझे लगता है कि काफी रूरल इंडिया में खासकर जो ओवरऑल इकोसिस्टम है, जैसे भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत बड़ा एफटीए किया है जिसमें हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो अपना सामान जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे बड़े मार्केट्स में बेचें। अब ये एक्सेस तो भारत सरकार ने प्रोवाइड कर दिया, पर उस एक्सेस को यूटिलाइज करने के लिए हमारे किसानों को सीखना पड़ेगा कि वहां के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे मीट करने हैं, वहां के सर्टिफिकेशन कैसे लेने हैं। वो सब हमारे भारत के जो किसानों को बताने के लिए हमारी ये जो डिजिटल इकोनॉमी है जिसमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बनेंगे, वो बताएंगे किसानों को, उनकी भाषा में समझाएंगे कि ये कैसे कैसे ये आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, किसी देश में अगर करना है कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे आपको बेचना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे जो एनेबलमेंट करेंगे और वो टीयर थ्री टीयर फोर और हमारे रूरल इंडिया को ही एनेबलमेंट करेंगे, क्योंकि ये जो एफटीएस हो रहे हैं वो हमारे किसानों के लिए, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए, जो हमारे एमएसएमई से जो कल्चरल टेक जिसको बोलते हैं, चाहे हमारा योगा हो या योगा रिलेटेड मैट्स या आजकल योगा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है, वो सारे छोटे छोटे जो हमारे एमएसएमईज हैं उससे बहुत बड़ा बेनिफिट करेंगे। और एआई और एआई से जुड़े हुए जो युवा हैं वो एक बहुत बड़े एनेबलर्स बनेंगे, तो उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अपना स्टार्टअप या अपना एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए, और हमारे किसानों और एमएसएमईज की जो अर्निंग है वो कई गुना बढ़ेगी इस एक्सेस के थ्रू, और टेक्नोलॉजी उसका माध्यम बनेगी।
भारत की सबसे जो महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कई तरह की मांगे उठ रही हैं कि क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों पर एक निश्चित आयु से पहले, क्या वो करने से पहले बैन लगा देना चाहिए। तो एआई का बढ़ता प्रयोग और भारत की सामाजिक व्यवस्था में आ रहे बदलाव, इन दोनों के बीच में कैसे संतुलन स्थापित कर सकते हैं, और एआई का फायदा भारत के समाज और भारत की विरासत को मजबूत करने के लिए किस तरह से उठाया जा सकता है।
भारत का जो कल्चरल इकोसिस्टम है वो उसकी स्ट्रेंथ भी है और जो डाइवर्सिटी है वो भी स्ट्रेंथ है, तो इसके लिए हमारी भारत सरकार जैसे हमारे डेटा लॉज बना रही है, नए आईटी पैक्ट बनाए, हम एआई रिलेटेड रेगुलेशंस भी बना रहे हैं, हम डीप फेक रिलेटेड जो मीडिया में चल रहा है या फेक चाहे इमेजेस हो या कंटेंट हो उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो अभी ये नया है और इसमें काफी काम करना बाकी है और ये कंसर्न्स भी जायज है, पर हमारी भारत सरकार सजग है, हमारे स्टेक होल्डर सजग है और इसमें अवेयरनेस कैंपेन भी चल रहे हैं। जैसे कुछ कैंपेन्स में जिसमें साइबर सिक्योरिटी में हम लोग भी भारत सरकार की एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ आईआईटी कानपुर के थ्रू हमने तकरीबन 10,000 एमएसएमईज को इसके बारे में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी दिया, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, ये जो डीप फेक कैसे होता है, पेमेंट में सिक्योरिटी के लिए आपको कौन कौन सा डेटा शेयर नहीं करना चाहिए, और जो आपके सोशल मीडिया से जो आपको एक्सेस मिलता है या आपको कोई क्लाइंट मिलता है उसको कैसे वेरीफाई करते हैं। तो ये प्रयास चल रहे हैं पर इसको बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल सही है कि ये एआई में बहुत बड़ी ताकत है, कोई उसे नेगेटिव वे में भी ले सकता है। एआई इज एज अ टूल, डिपेंड्स के आप जो उसका यूजर है वो उसको किस वे में लेना चाह रहा है, तो उसके लिए हमारी भारत सरकार प्रयासरत है। हाँ, अभी बहुत सारा काम होना और भी बाकी है, पर भारत जो है ऐसे यूज केस लेके पूरे विश्व को दिखा रहा है कि कहाँ फॉल्ट लाइंस है और कहाँ रेगुलेशंस में ट्वीक्स चाहिए, तो उसमें मुझे लगता है कि ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस रहेगा कुछ सालों तक और फिर ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा। जैसे हमारा यूपीआई सिस्टम है, जैसे हमारा आधार है, जैसे हमारा कोविन ऐप है, वो अब वर्ल्ड क्लास हो गया है। और अगर आप देखिए भारत मंडपम में भी अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप अपनी डिजी यात्रा ऐप लेके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा रोड मैप है भारत सरकार का, वो काफी बड़ी अनेबलमेंट।
बिल्कुल प्रसून जी, ये जो समिट है वैश्विक स्तर पर भारत को कहाँ खड़ा करता है?
टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये भारत का बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम रहेगा और काफी समय तक इसको याद किया जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ इस यहाँ पे जो राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं या बड़ी कंपनी के कॉरपोरेट दिग्गज आ रहे हैं या वहाँ की सरकारों के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, वो यहाँ आके बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि भारत ने कितना काम ग्राउंड पे ऑलरेडी कर रखा है। ना सिर्फ हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड लैब्स पे नहीं देख रहे, हम उसको रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, और उसके बाद तो उसको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने किस तरीके के नए नए प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हो, चाहे वो एमएसएमई के माध्यम से हो, कैसे हैंड होल्डिंग हो रही है, और उसके बाद जो ये हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितने बड़े लेवल पे एनेबलमेंट कर रहा है इन स्टार्टअप्स को, इन एमएसएमईज को, वो ना सिर्फ भारत के लिए बना रहे हैं, वो पूरे विश्व के लिए बना रहे हैं, क्योंकि भारत में जो बन रहा है वो जो भी प्रॉब्लम सॉल्वर या स्टार्टअप्स हैं वो मिनिमम रिसोर्स के साथ एक अच्छे प्राइस पॉइंट के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
बिल्कुल प्रसून जी, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, इसके लिए और इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और पत्रकार संतोष पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
मंथन।